من الثورة هرطب.
مرلي تو منگاؤ مرلی کیا کہتی ہے آپ کی تعریف میں مرلی جی تو بولے گی جب بتا دیا ہے روز کی سمسیاؤں کا حل مرلی سے ہو سکتا ہے مرلی ہوتی ہے سننے والے الگ کہیں لیکن سب کی الگ الگ پرتی سمسیاؤں کا حل ہو جاتا ہے بھل برہما کماریاں کہتی ہیں ہماری مرلی کیوں پڑتے ہیں مرلی تو ہماری تمہاری نہیں ہوتی مرلی تو سب کی ہے مرلی نہیں رکھتی ایک بیگھا میں کہاں یہ کوئی بابا نام پکڑ کے کرانے کی چیز ہو رہی ہے نام پکڑ کے کروانا ہوا نا کوئی پوائنٹ بھی ہوتا ہے سرکار سے وہ امنگ اس کا حکم کر دیتا ہے اور آتا بھی ہے سنگ دیش سے سب سے بڑا سنگ دیش ہوتا ہے کام بیکار کا وہ اوستھا بہت ڈاؤن کر دیتا ہے بدھی جامڑی ہو جاتی ہے گیتا میں لکھا ہے بدھ نے آسات پسند پرنسپتی بدھی اگر ناش ہوتا ہے تو پرن نکل جاتے ہیں پرن نکل جانا بنے مر جانا مانا انشچ بدھی ہو جانا اگر پرسارتھ کرنے والا انشچ بدھی ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی انشچ کے ویبریشن پھیلاتا ہے جو پہلے بہت سروس کرتا تھا وہ پھر جو سروس کرنے لگ کرتا خود کا نشچے ہوتا ہے تو دوسروں کا یہ امنگ اتنا بڑھاتا ہے خود کی انشچے ہی سے جاتی ہے تو جو بھی سمپرک سمپرک میں سمبند میں آئیں گے ان کے نشچے کو ڈگانے کا کام کریں گے اور یہ اوستھا سبھی کے لیے آتی ہے چاہے بڑے سے بڑے مہارتھی ہوں چاہے چھوٹے پرسارتھی ہوں گیتا پاٹھشالائیں کوئی توڑ ہی نہیں جاتی ہے نئی نئی گیتا پاٹھشالائیں جمع تو جائے جس کو جہاں اچھا لگے وہاں جائے روکنا کسی سے نہیں ہے نہیں کوئی گیتا پاٹھشالا توڑ ہی نہیں جاتی ہے اگر کوئی دو چلن چلتا ہے تو سطح ہی آگے چل کے ٹوٹ جاتی ہے باقی جس کو جہاں اچھا لگتا ہے وہاں جا کر کے اپنا اس میں پیار سے کلاس کرے اچھا نہیں لگتا ہے تو دوسرے جی کا پاس نہیں گئے کلاس کرنا نہیں چھوڑے گلی گلی میں سینٹر ہوں گے گھر گھر میں آسن ہوں گے گھر گھر آسن بنے گا کیسے گھر کو آشرم بنانا ہے نا کیسے بنے گا اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں کسی کے یہاں نہیں ہوگا ہمارے ہی گھر میں ہوگا تو ہوگا ہوگا گھر کے چار سدسیہ ہیں مل کر کے کلاس میں بیٹھتے ہیں بابا کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی تو گیتا پاٹھشالا کا روپ ہی ہے نا ایک طرح سے بھلے باہر سے نہیں آتے اپنے گھر میں ہی بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہے سنگٹھن جتنا زیادہ ہوتا ہے ڈائجیشن اتنی زیادہ سشکت بنتے ہیں سنگٹھن جتنا ٹوٹتا ہوا ہوتا رہ جائے گا تھوڑے لوگوں کا سنگٹھن ہوگا تو ڈائجیشن اتنے کمزور ہوں گے مندر ہے مسجد ہے گرجا گھر ہے گردوارے اس لیے بنائے گئے کہ لوگوں کا سنگٹھن کا ڈائجیشن एक मत का वाइब्रेशन ज्यादा चौड़ाई में फैले, विस्तार में फैले, सारे संसार में सब उसको प्रभावित हो जाए। मूल ताकत तो वाइब्रेशन की होती है। गुजरात विनाश हुआ, हर चीज मुहैया कराई गई देश वालों से, विदेश वालों से, सब प्रकार की संस्थाओं से, लेकिन जो शांति है आत्मा की, वो आत्मा की शांति थोड़ी किसी से मिल सकती है, तो वाइब्रेशन से ही मिलेगी। क्योंकि ज्ञान में चलने वाले बाबा जो बच्चे हैं उनके वाइब्रेशन मजबूत बन सकते हैं, लेकिन वो बनेंगे तभी जब अपने अंदर चैरिटी होगी, चैरिटी के वाइब्रेशन होंगे, चैरिटी के वाइब्रेशन जितनी जाति बढ़ते जाएंगे उतनी आपस में यूनिटी बढ़ती जाएगी। इन चैरिटी जितनी बढ़ेगी तो आपस में तोड़ फोड़ होती रहेगी, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे। अच्छा ही है, देखने का ये बुरी में तो कभी बोला नहीं है, किसी का वोट देखे। अगर कोई बुरा करता है, अवगुण करता भी है, अवगुण को धारण करता है, तो उसके लिए बाबा आया हुआ है ना, धर्मराज बन गए, हम जो धर्मराज बन गए, बाबा सारा फैसला करेगा, क्या राइट है क्या रंग है, किसी को पहले की कोई दरकार ही नहीं, यह फैसला नहीं होगा। किसने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, किसी ने क्या किया, उसका फैसला आखिर आखिरी में होना है कि नहीं होना है। जब होना ही है तो फिर हम पाए के लिए उसमें होने लगे। अरे डिस्टर्ब करने वाले का तो बहुत भाग्य है कि यहाँ देखो कोई ब्रह्मा कुमार नहीं आया संदेश देने के लिए है। नहीं, अब बाबा आया या कौन आया ये तो कोई पक्का पुरुष नहीं, लेकिन आया कोई ताकत आई और वो ताकत आके सारे विक्रमगंज के चारों तरफ से धीरे धीरे गाँव में दूर दूर तक संदेश हो गई। चलो कोई आत्मा ही सही, परमात्मा न सही, लेकिन कोई पावरफुल ऐसी कौन थी जिसने बेसिक ज्ञान भी लिया है, एडवांस नॉलेज भी ली है और नाम पता तक सारा बता दिया है। तो आज का फाउंडेशन याद रखने की है। लोग तो अपने पूर्वजों को बाप दादों तक का नाम याद रखते हैं, विक्रम गंजी का जो परिवार उठा है, जो भी ज्ञान में चला है, उसके मूल में कौन है? मूल में तो आखिरी जो आत्मा है ना, जिस आत्मा ने सबको उठाया, सबको एड्रेस दे दिया, तो जाओ वो वहां जाओ, वहां से तुमको विश्व के लिए रोशनी देने वाली चीज मिलेगी। अगर वो आत्मा खुद ही परमात्मा होती तो फिर ये थोड़ी देती कि वहां जाओ। लेकिन वो अपना कार्य करके चली गई, संदेश दे के चली गई, जो कुछ सोचता है उसके ऊपर सर्विस का भार था, वो अपना सर्विस का भार उतार दिया, आप लोगों को संदेश मिल गया, फिर जाके अपना दूसरा देश जरूर ले लिया, आत्मा मुक्त हो गई। अदस्य शक्तियां बिना उसके टाइम से हम बच्चों का बहुत सहयोग देगी। बुद्धि ऐसी घुमा देगी कि मकान अगर गिर रहा है तो जहां भागना चाहिए वहीं भगा देगी, आते बुद्ध पाए वहीं भाग जाएंगे। कोई सोचे घबराए, कितना भी घबराए, कितना भी सोचे, जिससे जहां जाना होगा, जहां सर छुटाना होगा, वहीं जाके सर छुटाएगा। ये भात भात की बड़बूला ट्रेंगल की अदृश्य शक्तियां हैं, ये विनाश के टाइम पे काम करेंगी। ब्राह्मणों ने भी ढेर सारी शरीर छोड़ रहे हैं, दूसरे नालंदा वालों ने ब्राह्मण बहुत से शरीर छोड़ रहे हैं, पुराने पुराने शरीर छोड़ रहे हैं, उनको शिक्षण शरीर मिल रहे हैं, एडवांस वालों ने भी अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, उनके शिक्षण शरीर मिलते जाते हैं, शिक्षण शरीर से उनका जो भी हिसाब किताब है वो पूरा करेंगे। शिक्षण शरीर भारी आत्माओं को आने जाने की तो कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है, एक सेकंड में वो कहीं से कहीं भी आपकी जा सकती का प्रसार प्रचार करवा सकती कर सकती।
अभी बाबा जो शरीर सो रहे हैं वो नहीं शिक्षण शरीर को भी करते,
जो अचानक मौत के शरीर छोड़ते हैं उनको शिक्षण शरीर लेना पड़ता है। सामान्य मौत तो उनकी मौत होती है, उनको ये जमीन नहीं है तो उनको शिक्षण शरीर लेना ही लेना
पड़ेगा।
हाँ वो तो ठीक है, शिक्षण शरीर अगर किसी का अचानक शरीर छूट भी गया, मान लो हाथ फूल हो गया कोई ब्राह्मण का, तो वो थोड़े समय के लिए शिक्षण शरीर धारण करेगा, लेकिन धारण करने के बाद फिर कभी ना कभी तो जन्म लेगा, जब कभी जहाँ कभी भी जाकर जन्म लेगा दो चार साल के बाद, तो ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेगा। अगर न भी ले ब्राह्मण के घर में जन्म तो भी जो दो चार साल बड़ा होकर के दस साल बड़ा होकर के वो ब्राह्मण बनेगा। और अभी कितने ज्यादा मार्गे नहीं है, अभी तो छोटे छोटे बच्चे ही घर में जाकर के जन्म ले लेते हैं, ब्राह्मण के यहाँ जो गिरते हैं जो ब्राह्मण गिरते हैं उन्हीं के यहाँ जाके जन्म लेते हैं, उनका गिरना होता है और उनको मौका मिल जाता है, उनका भाग्य बन जाता है। अब तुम का ही नहीं परेशान हो रही है, उनकी कोई परेशानी नहीं है, जिसको जो परेशानी उठानी है मान के कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बोलने से होता क्या है। अगर कोई मकान बनाता भी है और बाबा ने मना किया हुआ है प्रॉपर्टी नहीं बना दी तो विनाश विनाश हो जाएगी, तो नुकसान दूसरे का होता है, तुम्हारा क्या जाता है, तो जाता है क्या, तुम्हारे लिए तो कुछ न कुछ फायदा ही हो जाएगा। जो मकान तुम नहीं ऑफर कर सकते इतनी स्टेज आगे, वो अगर ऑफर कर रहा है तो तुम्हें फायदा होगा नुकसान होगा, है नुकसान जो होगा
ऐसी बात है बाबा। जैसे मान लीजिए कोई जान में चलो और दूसरों को भी चलाओ और कहो कि दुनिया का विनाश होने वाला है, ये होने वाला है, फिर वो काम करने लगे श्रीमत के खिलाफ, तो जो चल रहे हैं उनके परिवार क्या कहेंगे।
नहीं नहीं दूसरों की गलतियाँ नहीं देखनी, गलतियाँ आप
देखनी है, लेकिन ऐसी ही बात है, इसलिए मैंने मैंने
इसके लिए इसके लिए अगर कोई भी बात होती है तो बाबा के पास पहुँचाओ, बाबा जाने बाबा का काम जाने। हमारी सबके कोई कैसा भी है हमारी सबके प्रति सौभावना रहे,
तो ये तो कहा नहीं गया है कि जैसे आत्मारायण कहीं बना रहे थे ऐसी बात नहीं कही गई है, अगर दूसरा बन का कहीं नहीं चली है बात, शिकायत तो नहीं चल रही है अंदर में बहल कर यही बात है।
ठीक है, बड़े जो कर्म करेंगे बड़ों को देख करके छोटे कर्म करेंगे, तो उसका हिसाब किताब उनके ऊपर पड़ेगा, परेशान क्यों होते। ये कहने की बात नहीं है, कहने से कुछ होगा भी नहीं। अगर कोई उलट कर्म करता है बड़ा, तो बड़ा जो है उसको उसका खमाजा उठाना पड़ता है। लेकिन इन सब बातों से एक बात साबित हो जाती है कि उनकी अवस्था बढ़ रही है, इंक्वायरिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना आपस में तोड़फोड़ बढ़ जाती है, दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दिलवाड़ा बाप आया हुआ है 5000 वर्ष के बाद, और उसके आने के बावजूद भी हम आपस में एक दूसरे से दिल जोड़ करके न रख सकें तो फिर कब रखेंगे? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के रखेंगे? दूसरे धर्म का कन्वर्शन भी तो चलता है, बीज रूप आत्मा में ही ऐसी कन्वर्ट करने वाली आत्मा होती जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट करके ले जाएंगी। यहाँ भी रास्ता बता देती है, वहां भी जाके रास्ता बता देंगी। एक वाणी में अद्वैत वाणी में बोला है, ऐसी ऐसी सशक्त आत्माएं हैं जो खुद को अपना रास्ता फट से चेंज कर देती है, अपने फॉलोअर्स को बदल लेती है। बोला है 99% की माला बन जाती है, बाकी 2 आत्माएं ऐसी हैं बेढंग पुरुषार्थ करने वाली जिनकी माला नहीं बन गई है। वो अच्छा पुरुषार्थ करती है तो उनके फॉलोअर्स बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक उनका पुरुषार्थ डाउन हो जाता है, डाउन की स्टेज में चली जाती है। तो खुद ही डाउन हो जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स नीचे गिर जाते हैं। अब वो पावरफुल है वो कभी भी अपनी अवस्था पर कर लेंगे, फॉलोअर्स बेचारे गिर हो जाते हैं। इसलिए एक को पकड़ना चाहिए, एक है एक रस, एक का पुरुषार्थ है सदा काल का ध्रुव पुरुषार्थ, और बाकी सब ऊपर नीचे होने वाले हैं। जो ऊपर नीचे होने वाले हैं वो ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे कोई वाणी उठा दे दो हमें लौट है, कोई नहीं आजा 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 इधर आजा, उसने से एक वाणी निकाल इधर इधर आ इधर, अरे तू आजा आजा आजा, अरे उधर हाँ ले एक निकाल ऊपर वाली हो रही है। आज की वाणी है छत्तीस एक 2001 की प्रातः क्लास दूसरे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं क्या? इस बात का नशा रहना चाहिए कि जो हम ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। देवता ही किसे कहा जाता है? देवता माने देवने वाले, जो दूसरों को कुछ न कुछ गुण शक्तियां दान में देते हैं, किसी से लेने की आशा आशा नहीं करते कि ये करो तो हम करें, ये दे तो हम दें। तो ये लक्ष्य रखना है, ये नशा रखना है कि हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है, और दुनिया में किसी को बाप की श्रेष्ठ मत मिलती नहीं। रिकार्ड चला रात को राही छत मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। थक जाते हैं तो क्या होता है? दूर नजर आता है। थक जाते हैं तो पुरुषार्थ करना छोड़ते हैं, या तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है जब पुरुषार्थ ही ढीला हो गया तो क्या करेंगे है? याद की जो तीव्रता है वो खत्म हो जाएगी। अलबेले तक जो याद करेंगे, अमृत बेले उठे उठे न उठे, उठ भी गए तो नींद आ गई तो सो गए। तो जो टाइम है वो तो चला जा रहा है, रात को ही थक मत जाने, इसलिए नहीं थक जाने, जब लास्ट का पुरुषार्थ है और सवेरे होने ही वाला है, सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने ही वाला है। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर तो सारी दुनिया जान लेगी, फिर पुरुषार्थ करने का कोई विशेष फायदा नहीं है। बच्चों ने इस गीत का अर्थ को समझा, अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधेरी रात तो पूरी हो रही है। भक्ति समस्त हमारे ऊपर अब ताज आने का है। कौन सा ताज? पहले स्कूल ताज आएगा या शिक्षण?
शिक्षण
शिक्षण ताज कौन सा होता है? पवित्रता का ताज होता है, डबल ताजधारी है। इसको पवित्रता का ताज होता है, पवित्रता का ताज मैंने एक जिम्मेवारी का ताज होता है। पवित्रता का ताज जितना ही वहन करते हैं जितना हमारी ज्ञान की लाइट बढ़ती जाती है, जितना हम पवित्रता के लिए प्रतिज्ञा करते जाते हैं, मनसा वार्ता कर्मण तीनों प्रकार की पवित्रता को धारण करने की प्रतिज्ञा करते हैं, बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, उतना हमारा वाइब्रेशन तीखा हो जाता है मन चिंतन मंथन करने का। तो अब बच्चे समझते हैं कि हमारे ऊपर अब ताज आने का है, चाहे शिक्षण ताज हो और बाद में आने वाला चाहे चिंता भी है। पहले कौन सा आता है?
शिक्षण का।
पहले जो सुप्त दिव्य ताज है जो देवताओं को दिखाया जाता है, ब्राह्मण देवताओं को कौन सा ताज दिखाया जाता है?
लाइट।
सारे शरीर के ऊपर लाइट नहीं दिखाई जाती, कहाँ लाइट दिखाई जाती है? सर के चारों ओर। इसका क्या मतलब हुआ?
ज्ञान की लाइट।
मैंने उनका पूरा शरीर कोई पवित्र नहीं हो जाता है ब्राह्मणों का, शरीर के बीच बीच में माया की चपेटे में भी आ जाते हैं। शरीर के बीच बीच में जब तक रावण राज्य है दुनिया में थोड़ा बहुत भी तो चपेट लगती है माया की, लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि जो है मनन चिंतन मंथन की रोशनी में रहती है। जब मनन चिंतन की रोशनी में बुद्धि रहती है तो बुद्धि में नहीं है सर, और बुद्धि के चारों तरफ जो प्योरिटी का वाइब्रेशन घूमता रहता है। तो ये ताज आने का है। कोई कोई तो आया है, कोई कोई तो आने वाला है। यहाँ बैठे हैं एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनने की, ब्राह्मणों के संगठन में बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाए। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य कहा ही जाता है उनको जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की औलाद मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि शुरू होती है, तो कोई स्थूल में नई सृष्टि नहीं बना दी जाती, मनन चिंतन मंथन का मादा बदल दिया जाता है ब्रह्म के द्वारा। तो जरूर मनु के द्वारा कोई ब्राह्मण निकले होंगे ऐसे जिन्होंने मनन चिंतन किया, मनन चिंतन करके दुनिया के वाइब्रेशन को बदल दिया, अपने वाइब्रेशन को बदल दिया। उस वाइब्रेशन में जो भी आत्मे आती है वो तो शांति का अनुभव, निसंकल्प स्टेज का अनुभव करती अभी बहुत से ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं एडवांस पार्टी में जो ये अनुभव करते हैं कि पहले तो घर गृहस्थ में रहते हैं, काम धंधे में रहते हैं तो बहुत संकल्प चलते हैं। जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, बस बाबा याद रहता है। इसका कारण क्या हुआ? ये परिवर्तन का कारण क्या होता है? वाइब्रेशन कैसे? घर में रह करके, काम धंधे में रह करके वाइब्रेशन क्यों ऐसे नहीं बनते थे? कुछ संकल्प स्टेज वाले बाबा के पास पहुंच के क्यों बन गए? सबकी बात नहीं कर रहे, जिन बच्चों को ऐसा अनुभव होता है उनकी बात कर रहे। तो कारण क्या होता है, ये परिवर्तन क्यों आ जाता है? इसलिए ये परिवर्तन आ जाता है कि बाबा जिस तन में कार्य करता है उस तन को तो पहले आगे आगे जाना है ना, किस चीज में आगे जाना है? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी के लिए। तो उसके संग के रंग से जो भी उस वाइब्रेशन में बच्चे पहुंचते हैं उनको भी ऐसा अनुभव होने लगता है अल्पकाल के लिए। बच्ची मार्ग में ये यादगार हम देखते हैं अभी तक भी, मंदिरों में जब जाते हैं तो वहां जाकर के अल्पकाल के लिए क्या अनुभव करते हैं? शांति का अनुभव करते हैं ना। तो उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? फाउंडेशन यहाँ सब भी ऊपर पड़ता है। तो अभी प्रैक्टिकल में वो मंदिर की यादगार का फाउंडेशन पड़ रहा है। नंबरवार हम बच्चे ऐसे तैयार हो गए हैं, हर एक बच्चा मन मंदिर बन जाएगा। जो भी आत्मा उसके संपर्क संसर्ग में आएंगी शांति का अनुभव करेगी, स्मृति मात्र से ही शांति का अनुभव होने लगेगा। तो ये वाइब्रेशन सुधारने का जो जिम्मेवारी का ताज है वो हर बच्चे को धारण करना है, क्योंकि हमारी अहम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। पहले हम शुष्ट मनुष्य बने, मनु की औलाद, ब्रह्मा की औलाद, मनन चिंतन मंथन करने वाले बने। खाना पीना कमाना तो अनेक जन्मों से होता आया, लेकिन जो ईश्वरीय चिंतन असली करना चाहिए वो हमें रास्ता नहीं मिला, क्योंकि बताने वाले मनुष्य गुरु थे। अब सच्चाई बताने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला बाप आया हुआ है, तो वो हमारी बुद्धि को मनन चिंतन मंथन की असली गति दे रहा है। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, वैसी बात वैसा वाइब्रेशन बार बार बुद्धि में चलाने से वो सोचता है कि हम छोटी में से कैसे निकले, हम तो भैंस हैं। तो प्रैक्टिस पड़ जाती है, प्रैक्टिस से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। वो तो है भक्ति मार्केट दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली, सेना काई की ली क्यों? और रावण को मनुष्यों की सेना मिल गई और राम को दुनिया में मनुष्य मिले ही नहीं, उनको बंदर मिले, ये गैंग क्यों हुआ? जरूर भगवान आकर के दुनिया में जो सबसे जास्ती पतित से पतित है, समूह प्रधान, बहुत ही विकारी जो होते हैं, और महाधिकारियों को संगठन बना करके फिर रावण से टक्कर दिलाता है। 2021 की वो मुरली का पहला पेज चौथी लाइन में बात चल रही थी, राम ने बंदरों की सेना ली और रावण ने मनुष्यों की सेना ली, जो तमो प्रधान राक्षस बन चुके थे। तो बंदर निशानी है इस बात की, तो उनमें सबसे जास्ती विकार होते, काम विकार आती का होगा। अभी ऐसी दुनिया आने वाली है संसार के सामने, हर मनुष्य ये अनुभव करेगा। तो जैसे आज मनुष्य नहीं है, बंदर हो चुके हैं। बंदर इतना विकारी होता है तो सबसे सबके सामने बैठ करके विकार भोग लेता है। आगे वो टाइम आने वाला है उसमें मनुष्य भी ऐसे विकारी हो जाएगी। अभी भी ऐसे ऐसे केस देखने में आते हैं, ऐसे ऐसे देश हैं जिनमें लाज शर्म लिहाज की कोई बात ही नहीं होती। ये बंदरों की सेना अति विकारियों की सेना है, जो आखिरी वर्ग में बहुत विकारी बन जाते हैं। अति के कामी, अति के क्रोधी, अति के लोभी, अति के मोही, अति के अहंकारी। कितना अहंकार होता है बंदर, हाथी भी सामने से गुजरेगा तो उसको भी धोखी देने लग पड़ेगा। अरे कहाँ हाथी और कहाँ छोटा सा जानवर, क्या बिगाड़ सकेगा उसका। मोह कितना होता है, बच्चा मर जाता है तो महीने भर तक उसकी खाकर जो है लपेट जाता है पेट से, बदबू आने लगती है तो भी नहीं छोड़ता। मनुष्य भी आज का ऐसा हो गया, कोई संबंधी मर जाता है तो साल भर तक उसकी स्मृति बुद्धि में से हटती नहीं, जैसे चिपका से रखी हुई है। देह देह की स्मृति को चिपका की तो उसको बुद्धि की तो उसको चिपका के रखता है, ऐसे उसकी परंपराएं बना रखती है। फेर भी करो, ये करो, वो करो, बर्फी करो, 100 बरसी तक नहीं पहुंच गया तो बंदर तो 1-2 महीने तक लिपटा के रहता है, तो सालों साल बुद्धि भी चिपका के रखते हैं। लोभ कितना होता है बंदर में, कर्णों की भूगड़ों की पोटली उसमें डाल दो, छोटी सी गगरी दे और बंदर कहीं उसमें हाथ डाल करके उसको पकड़ लेगा भूगड़ों को, तो वो अपनी गुत्थी नहीं छोड़ेगा, लिए लिए छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके पीछे कोई डंडा लेकर के ही पड़ जाए। तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो मटकी छूट नहीं जाएगी। तो अति का लोभ भी होता है, क्रोधी बंदर इतने होते हैं कि अगर संगठन में उनको चने डाल दिए गए तो फिर उनकी लड़ाई देखो, और दूसरा डंडे और दांत दो डाल दो तो फिर देखो वो एक दूसरे की कितनी पिटाई करते हैं। जब वो एक दूसरे से चिपटते हैं क्रोध में आकर के काटने के लिए, तो बड़ा बड़ा गोला बन जाता है, एक दूसरे को चिपकेगा, दूसरा तीसरे को चिपका, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां एक दूसरे को चिपकते ही जाएंगे, तो गोला यू यू लड़ता चला जाता है। इतने ज्यादा क्रोधी होते, तो ये ऐसी बंदरों की सेना ली है। ह्यूमन मंकीज की सेना है, मनुष्यों के रूप में जो बंदर बुद्धि है उनकी सेना है। तुम यहाँ बैठे हो ना, मैंने सीधा सीधा नहीं कहा कि तुम बंदर हो। बंदरों का मिसाल दे दिया, फिर बताया तुम यहाँ बैठे हो ना, मैंने तुम जितने बाबा के सामने बैठे हुए वो सब कौन सी बुद्धि हुए? बंदर बुद्धि हुए। जानते हो हमसे देवी देवता डबल सिर ताज बनेंगे क्या? क्या बनेगी? बंदर से मंदिर लाइट बनेगी। तो बाबा जी कहने की युक्ति देखो कैसी बड़ी है। सीधे सीधे किसी को कटाक्ष नहीं मारते, सीधी गाली किसी को नहीं देंगे, घुमा फिरा के बता दिया कि तुम अभी बंदर हो और आगे चल करके बंदर से मंदिर लाइट बनने वाले हो। जानते हो हमसे देवी देवता डबल से ताज बनेंगे? जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़ करके डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो तो पढ़ाई से हमसे देवी देवता बन रहे, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। क्या कहा? सिर ताज कब होगा है? जब ये सही छोड़ेंगे, बने बुद्धि को जब हम देह का भान छोड़ेंगे तो हम विश्व की जिम्मेवारी का ताज अपने ऊपर धारण कर लेंगे। तो सारे विश्व को हमें पलटना ही पलटना है। हमारी जिंदगी का लक्ष्य अब ये है, पेट का पोषण पेट भरना हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? दुनिया को बदलना है, अपन को बदलना है। तो ये देहवान शरीर का छोड़ेंगे और हमारे सिर पर जिम्मेवारी का ताज, क्योंकि हम विश्व पिता के बच्चे हैं। विश्व पिता की जिम्मेवारी है सारे विश्व को पलटाना, तो हम बच्चों की भी जिम्मेवारी है सारे विश्व को पलटाना। ये तो बहुत गंदी सीधी दुनिया है ना, बड़ी दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता होगा। क्या नए विश्व का रचयिता कौन होगा है? जो ऐसा नया संगठन बना करके दिखाए, कैसा नया संगठन? इसमें बंदर बदल करके मंदिर लाए तो देने वाले देवता बन जाए। किसी से कुछ लेने की इच्छा न करें कि ये सुधरता नहीं है तो हम क्यों सुधरे? इसका मतलब क्या हुआ? लेने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? दूसरे के स्वभाव संस्कार बदल जाए तब हम बदलें, दूसरा हमको सुख दे, सुख के वाइब्रेशन हमारे ऊपर छोड़े, सुख की बातें करे तब हम इससे सुख की बातें दें। एक तो देवता हो गया, नई विश्व का बनाने वाला जो रचयिता बाप है, जो शक्ति का हीरो पार्टधारी है, वो ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? कि दूसरा बदले तो हम बदले, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सके ये पढ़ाई। तो बाबा ही तुमको पढ़ करके सिखलाते हैं, पढ़ा करके सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्माभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, क्या कहा? ब्राह्मण है तो कोई जरूरी नहीं कि सभी ब्राह्मण आत्माभिमानी हो। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ कैसे ब्राह्मण थे? है आत्मा अभिमानी थे या देह अभिमानी थे?
देह
अभिमानी थे, थे तो ब्राह्मण न, तो फिर तो ब्राह्मण बनना ही कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बनने के साथ साथ क्या चाहिए? आत्मा अभिमानी बनना है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, देवताएं कितने पवित्र थे, कितने पवित्र थे, कर्मेंद्रियों से पवित्र थे, वाचा से पवित्र थे या मनसा तक भी पवित्र थे? उनके मन में भी कोई मैल माटी नहीं आता था, कोई निगेटिव संकल्प न अपने प्रति न दूसरे के प्रति चलता था। यहाँ तो देखो कितने पतित मनुष्य, सकल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं की पुजारी है वो खुद भी उनके आगे महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हम पतित पुजारी हैं। अपनी होती करेंगे और देवताओं के मंदिर में जाके देवताओं की महिमा करेंगे, वो बात है यादगार कहेंगी कैसे ना? मंदिरों में जाते हैं बहुत लोग और मूर्ति के सामने बैठ करके महिमा करते हैं, कि तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न और हम पतित भिखारी हैं। वो शूटिंग भी हम बच्चे ही करते हैं, जो जो बच्चे संपन्न स्टेज को धारण करते जाएंगे, क्या जो जो बच्चे संपन्न स्टेज को धारण करते जाएंगे, ये कब की बात है? चारों लोगों की शूटिंग होने से पहले की बात है या बाद की बात है? पहले की भी बात है लेकिन उसमें नंबरवार पर बच्चे हैं, और बाद की भी बात है, बाद के लिए तो सबके लिए। शूटिंग के पीरियड में भी कुछ विशेष आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको कहीं भी फिर भटकने की दरकार नहीं पड़ेगी, क्या जहां भी बैठे होंगे वहां स्वतः ही आत्माएं खिंच करके उनके पास आ जाएंगे। प्योरिटी को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। तो कौन खिंच करके आ जाएंगे, किसके सामने खिंच करके आ जाएंगे? प्योरिटी के सामने जो इंप्योरिटी वाली आत्माएं हैं, जो इंप्योरिटी को नहीं छोड़ पा रही है, वो खिंच करके आ जाएंगे और ये अनुभव करेंगी कि हम पतित हैं और ये पावन देवता। अपने को गंदा अधिकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर के जाए करके देवता बनेगी, कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाए, क्या कहा कृष्ण के मंदिर में जाके कृष्ण की पूजा किस लिए करते हैं, या कोई भी देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं? कि हम भी इनके साथ बैकुंठ में जाकर के बास करें, ये भी बात कहां की है? जरूर है, कृष्ण की आत्मा ने कोई ऐसा संगठन ने कोई स्थान ऐसा तैयार किया होगा जहाँ सबके पहुँचने की दिल रहती होगी कि इस दुनिया के जंजाल से बंदा दोरी से हम छूटे, इस गंदी दुनिया से छूटे और बाबा के पास जाकर के देह बना दे। अब बाबा का रूप तो बाबा कहो कृष्ण, बच्चा कहो संगत जी को, कैसे कहो रूप तो एक ही हो जाता है, बाप दादा कहो तो कृष्णपुरी में जाने के लिए पूजा करते हैं, परंतु उन भक्तों को ये पता नहीं है कि हम कब जाएंगे।
है
कब जाएंगे? पूरे आत्माभिमानी बनेंगे तब जाएंगे या पहले ही चले जाएंगे?
है
आत्माभिमानी बनेंगे और तब जाएंगे। जैसे देश सिंगाली वालों के लिए कह दिया, आत्मारूपी सही की पूरी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। कब सीखोगे? जब देशी कली आत्मारूपी सुई की सारी कट उतर जाएगी, बिंदु को याद करते करते। क्योंकि दूसरी नाली में तो परमात्मा का रूप ही कौन सा बताया जाता है? ज्योति बिंदु। बिंदु को याद करने से बुद्धि सिस्टम बनेगी, बिंदु को याद करने से बुद्धि में चैतन्यता आएगी, बुद्धि में प्रकाश आएगा, रोशनी आएगी। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा जब हमारी ऐसी शिक्षक बन जाती है तो ज्ञान के गहरे पॉइंट शिक्षक पॉइंट बुद्धि में आने लगते हैं। तब हम नंबर बार जाकर के बाप से डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं। तो वो भक्त तो कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, जाते इसलिए हैं कि हम भी बैठक में जाकर के निवास करें, ये इच्छा लेकर के जाते हैं। यहाँ उसकी शूटिंग होती है, लेकिन जब शूटिंग करने वालों को ये पता है कि हम कब जाएंगे सदाकाल के लिए बैठक में कृष्ण के पास, और न उन भक्तों को पता होता है। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर के भक्ति का फल देंगे, तो पहले तो तुमको निश्चय चाहिए। क्या चाहिए? इस बात का निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। हैं? उन्होंने तो भक्ति बारे में कह दिया है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? पढ़ाई किसने पढ़ाई? किसने पढ़ाई? अब हमारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि जो वैकुंठ का रचयिता है, वो वैकुंठ का रचयिता राम कृष्ण की आत्माएं हैं, जिनके द्वारा परमात्मा शिव आकर के वैकुंठ रचता है। वैकुंठ जैसा संगठन, वैकुंठ जैसा वाइब्रेशन वाला स्थान तैयार कराता है। तो पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन है। कौन है पढ़ाने वाला? राम है, कृष्ण है कि शिव बाबा है? हमको पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। भले सबसे पहले से पहले पढ़ाई पढ़ने वाले राम कृष्ण की आत्मा बनती है, वो हमारे जैसे बड़े भाई और बाप समान हो जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप, और समुद्र शक्ति का सबसे बड़ा भाई शक्ति की सोल। तो ये निश्चय चाहिए, ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं, जिनको ये पता नहीं वो शीर्ष बन कैसे सकते हैं? क्या नहीं पता कि हमको पढ़ाने वाला, हमको श्रीमत देने वाला कौन है? जब हमें पता चलेगा कि हमको पढ़ाने वाला श्रीमत देने वाला ऊंची तो ऊंचे है, है तो फिर हम भाइयों को बहनों को देखेंगे या भाई बहनों की बातों को हम कान पर धरेंगे? वो कुछ भी करते रहे, कुछ भी मत देते रहे, कुछ भी डायरेक्शन देते रहे, जब हमारी बुद्धि में बैठ गया कि हमको पढ़ाने वाला वो है और वो हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो हम किसी की सुनने वाले नहीं है। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं, परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। श्रेष्ठ बना देवता, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों? मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, मनुष्य जो है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं, जब तक भ्रष्टाचार से आचरण करने वाले हैं तब तक उनको देवता देवता नहीं कहा जा सकता। परमात्मा की मत ही सिर्फ बनाती है, जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। क्या क्या बुद्धि में बैठेगा?
उनको
सुबावा उच्च को उच्च पढ़ाने वाला है, कोई मनुष्य हमको पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। तो जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नई बुद्धि में बैठेगा, नई तकदीर में होगा तो कुछ भी समझेगी नहीं। जब समझेंगे तो खुश होकर के मदद करने लग पड़ेगी। क्या कहा? समझने वाले की निशानी क्या बताई?
मदद करने लग।
हाँ, ये पक्की निशानी है। कोई जिसका बुद्धि हुआ है उसकी ये निशानी है, जिसकी बुद्धि में बात बैठ गई है, जो बाबा और बाबा की बातों को समझ गया है, शक्ति चक्र के राज को समझ गया है, उसकी निशानी ये बताई कि वो दूसरों की मदद किए बगैर, वो बाप की मदद किए बगैर रह नहीं सकता। वो दूसरों का कल्याण जरूर करेगा। करती कला तेरे गाने सर्व का भला। करती कला वाला जो होगा वो दूसरों का भला करने में जरूर लग जाएगा। और करती कला उसी की होगी जिसने परमात्मा बाप को पहचान लिया। कई तो जानते ही नहीं है, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। क्या कहा? बाबा कोई से क्यों नहीं मिलते? किसको मिलना चाहते हो बाबा? वो बाबा को पहचानने वाले बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, मददगार बच्चे हैं, दूसरों को रास्ता बताने वाले बच्चे हैं, करती कला वाले बच्चे हैं, उन बच्चों से बाबा मिलना चाहते। क्या मैं ऐसे बच्चों को बाबा मिलना नहीं चाहते? वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। तो जो गिरती कला वाले होंगे, यह जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, वो बाप को ही पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ेंगे। तो बाबा मददगार बच्चों से मिलना चाहते, श्रीमत को न जानने से उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। किनको? बाबा को। यहाँ उनको क्यों बोल दिया, मेरे को क्यों नहीं कहा? क्यों दूर कर दिया? हाँ, क्योंकि जिस समय ये वाणी चलाई गई थी उस समय ब्रह्मा के बाबा लेखराज ब्रह्मा के अंदर शिव की सोल बोल तो रही थी, लेकिन वो शिव की सोल का जो प्रैक्टिकल रूप है परमात्मा पायस वो नहीं चल रहा था। वो प्रैक्टिकल परमात्मा पायस उस भविष्य के लिए इशारा किया, क्योंकि भविष्य में परमात्मा जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है उसको दुनिया वालों के सामने नहीं लाना। क्या? जो उसको नहीं पहचानते हैं उसको सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो वो उनको भी अपनी मत देने लग पड़ेंगे, डिसरिगार्ड हो जाएगा सदगुरु का। तो सदगुरु का डिसरिगार्ड करने का निमित्त कौन बने? कैसे? बोला है बोले है अक्षर बुद्धि अहिल्या क्यों बनी? जो अज्ञानी है, जो भिखारी है, जो कपित है, जिन्होंने परमात्मा बाप को पहचाना ही नहीं, उनको ले जा करके बाबा के सामने रख दिया, उनका भी कल्याण हो जाए। तो उनका कल्याण ऐसे होता नहीं है। कल्याण कब होगा? जब उनको अच्छी तरह पूरी पहचान मिल जाए और निश्चय बुद्धि हो जाए, ईश्वरीय सेवा है मददगार बनने लग पड़े। 25 जनवरी 2021 मुरली का दूसरा दिन, दूसरी लाइन। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख बनाने के लिए। क्या आए हैं या आके चले गए?
आए।
ऐसे नहीं जो बाप आते हैं और ज्ञान गुरु सुना करके ब्रह्मा के सामने चले जाते हैं और फिर बच्चे अपने आप शिष्य बनते रहते हैं। ये देवधारी धर्म गुरु लोग जो हैं, जो बने हुए ब्राह्मण हैं, वो शिष्य बनाने लग पड़ते हैं, देवता बना देते हैं। नहीं, तो बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है, बाप के रूप में आना पड़ता है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफे बाबा आपके पास, आपसे आकर हम मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। क्या हम कितने पढ़ रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई का नशा बच्चों को बहुत रहना चाहिए। इस पढ़ाई का नाम क्या दिया बाबा ने, गॉडली पढ़ाई, सहज राजयोग की। और उस पढ़ाई का नाम क्या दिया है, डगली पढ़ाई। वो पढ़ाई करके डाग और बिचिस बन जाते हैं, बेहिचारी बन जाते हैं। वो पढ़ाई ही ऐसी है। और ये पढ़ाई करके, ये पढ़ाई करके अब बेहिचारी देवता बन जाते हैं। तो जिनको पता ही नहीं है उनको दशा कहां से करेगा। बड़ी ऊंची पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगंत है। तुम तो जानते हो हम ये पढ़ाई करते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल पेंट डबल ताज आ गए। क्या अब डबल सिर ताज हो जाएगी? कौन से डबल सिर ताज? एक तो स्थूल ताज हमारे ऊपर आ जाएगा जो चित्रों में दिखाया जाता है, देवताओं को स्थूल ताज भी दिखाया जाता है, और दूसरा प्योरिटी का ताज भी दिखाया जाता है। जिनके अंदर वो प्योरिटी मन चिंतन मंथन की रोशनी आती जाएगी, बुद्धि के चारों तरफ वो लाइट है, वो आंखों से वो लाइट देखने में आएगी, तो वो डबल ताज उनके अंदर दूसरों की मदद करने की जिम्मेवारी भी आ जाएगी। वो जिम्मेवारी का ताज और प्योरिटी का ताज देखने में आएगा। भविष्य जन्म जन्मान पर डबल से ताज लगेगी। क्या एक जन्म के लिए वो ताज देने के लिए नहीं आता हूँ, ताज तक कितने जन्मों के लिए बाप आते हैं डबल से ताज बनाने के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो उसके लिए फिर ऐसा प्रचार करना चाहिए ना। उसको कहा जाता है राजयोग। कैसा योग? उसमें राज भरा हुआ है, राजा ही प्राप्त कराने का रहस्य भरा हुआ है। कितना वंदन है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, सेवा करने के लिए कहाँ जाओ है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, जय मंदिर में। बाबा किनको समझाते होंगे, एडवांस के बच्चों को समझाते होंगे या बेसिक लेवल के बच्चों को समझाते होंगे? बेसिक बच्चों को समझाते हो है, बेटे सुने जो समझे वो दीजिए नहीं। क्या जो बेसिक के छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो सुनते हैं लेकिन समझते समझते नहीं, समझते कौन नहीं। जो एडवांस के बच्चे हैं वो डायरेक्ट बाप के आके जब सभी सुनते हैं तो बात की गहराई को समझते नहीं है बुद्धि से। तो बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। कैसे जाएंगे? जो घर छुटने वाले लक्ष्मी नारायण के मंदिर है वहाँ जाएंगे? चैतन्य कहाँ है यहाँ? यहाँ लक्ष्मी नारायण कहाँ से आ गए? चैतन्य माने जो युगल हैं ज्ञान में चलने वाले, जो गीता पाठशालाएं चल रही हैं, जिन गीता पाठशालाओं के युगल निमित्त बने हुए हैं गीता ज्ञान देने के, ज्ञान सुनाने के, अपने घर को जो आश्रम बना के बैठे हुए हैं, घर घर का आश्रम बना रहे हैं, उनके घर में जाकर के उनको समझाओ। सन्यासी जो बैठे हैं बड़े बड़े सेंटर और अड्डे जमा करके, उनको समझाने न जाओ। क्या उनको समझाने क्यों नहीं जाओ? वो इतने अहंकार में बैठेंगे तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, और पुलिस के हवाले कर देंगे, उल्टा इल्जाम लगा के। तो बाबा हमेशा समझाते हैं भक्तों को ध्यान देना चाहिए।